गोलोक एक्सप्रेस के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैं निधि वैद हैदराबाद से गोलोक एक्सप्रेस के यूट्यूब लाइव सत्संग सरल भागवत गीता सार रूप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और स्पॉटिफाई ऐप के माध्यम से या सोशल प्लेटफॉर्म के अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़े हुए अपने सभी दर्शकगणों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज बैसाखी की आप सभी को गोलोक एक्सप्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भागवत गीता सरल भागवत गीता सार रूप इसकी शुरुआत हो चुकी है और हर चैप्टर की समरी को समझने से पहले हम आजकल कुछ मिसकंसेप्शंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मिसकंसेप्शंस भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी अवरोधक है। तो इनमें से हमने सबसे पहले, मेरे पास तो भक्ति के लिए समय नहीं है, फिर भक्ति तो बुढ़ापे के लिए है, फिर मुझ में बुरी आदतें हैं, मैं भक्ति नहीं कर सकता, उसके बाद पिछले कल, भक्ति का व्यवहारिक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, इनके बारे में समझा। आज जिस मिसकंसेप्शन के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं तो अच्छे कार्य करता हूं, मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। फ्रेंड्स, ये भी हम समाज में बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि हम तो अच्छे काम करते हैं, हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इसके बारे में पहले पढ़ते हैं और चलते हैं हमारे डिवोटी सुधा प्रेशर जी के पास। सुधा जी, प्लीज इसे रीड कीजिए।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, आज मुझे श्री हरि जी की कृपा से और अपने मेंटर्स की कृपा से आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ने की मुझे सेवा मिली है। मैं ऐसा मिथ पढ़ने जा रही हूँ जिसमें मैं खुद भी फंसी हुई थी, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के अब वो मुझे क्लैरिटी हो गई है। तो आज का टॉपिक है, अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आइए जाने सत्य क्या है। पॉइंट नंबर 1, अहंकार वश हर मनुष्य यही सोचता है कि वो अच्छा कर रहा है। अच्छे की परिभाषा वैसे भी अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है और समय के साथ बदलती भी रहती है। जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वास्तविकता से हमें ये नहीं पता चलेगा कि सच में अच्छे कर्म क्या है। पॉइंट नंबर 2, जब कोई व्यक्ति बिना भगवान से जुड़े अच्छे कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई का अहंकार आ जाता है, जो बाद में उसके पतन का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर अगर व्यक्ति भक्ति भाव से अपने को निमित्त मानते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए जगत कल्याण करे तो वे सदैव अहंकार के रोग से बचा रहता है। पॉइंट नंबर थ्री, वैसे भी व्यक्ति पौधे लगाना, गरीबों की मदद करना, वृद्धाश्रम जाना इत्यादि अच्छे कर्म तो हर समय नहीं कर सकता। दूसरी तरफ व्यक्ति भक्ति का अभ्यास निरंतर करके अपने चित्त को शुद्ध रख सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप प्रतिदिन 2 घंटे के लिए गाड़ी चलाते हैं तो उस समय आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, परंतु आप स्वयं विचार कीजिए कि इस समय आप अच्छे कार्य कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर फोर, वैसे भी व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलना आपको अच्छे कार्य करने से रोकता नहीं, बल्कि भक्ति से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके सद्गुण विकसित होते हैं। दूसरों की मदद करने का और जगत कल्याण का भाव भी बढ़ता है। पॉइंट नंबर फाइव, केवल अच्छे कर्म का करने से एक व्यक्ति प्रसन्न तो रह सकता है, लेकिन भक्ति करने से जो असीम आनंद की प्राप्ति होती है उसे वो वंचित रह जाता है। पॉइंट नंबर सिक्स, जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे पुण्य मिलता है और कर्मों के अनुसार उसे अच्छे जन्म मिलते हैं, परंतु वे जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटते। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करे तो उसके कर्म दिव्य बन जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से हटकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। निष्कर्ष ये है कि हमें अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए, परंतु अधिक श्रेष्ठ ये होगा कि हम प्रभु से जुड़कर भक्ति भाव से शास्त्र के अनुसार तन मन और धन द्वारा जगत कल्याण में कार्य रहे। हरी हरी बोल जी, थैंक यू सो मच।
हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, अच्छे कर्म ही करने चाहिए, भक्ति की क्या जरूरत है। ये सही बात है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, पर ये कहना कि अच्छे कर्म ही करने चाहिए, भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक मिथ है, ये गलत है। क्योंकि हमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है और अज्ञानता के कारण हम इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पर उन्हें फल की इच्छा का त्याग करके और मैं के भाव को छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने वाले भाव से करने से वे ही काम जो हैं वो भक्ति बन जाते हैं। ये तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम एज ए सोल जो हैं वो परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, यानी परमात्मा हमारे पिता हैं। सोचिए, दुनियादारी में अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, और वो सोचकर ये सोचकर कि वो तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं आपसे बात ही नहीं करते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, तो एज ए पेरेंट आपको कितना बुरा फील होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम जो भी कार्य करें उसे भगवान को समर्पित करते हुए परमात्मा को खुश करने वाले भाव से ही हमें करना चाहिए, थैंकफुलनेस के भाव से हमें करना चाहिए। और भगवान के साथ, यानी कि अपने परम पिता के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाना चाहिए। और यही तो भक्ति है, भक्ति के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। अपने कर्मों को भक्ति में बना लेना, कर्म करते हुए परम पिता परमेश्वर को हर समय याद रखना, यही भक्ति है। फ्रेंड्स, सोचो कि अगर हमारे बच्चे आके हमें ये कहते हैं कि मम्मा पापा, आपकी वजह से ही आज हम संसार में अच्छा काम करने के काबिल बने हैं, तो हमको आपको कितना अच्छा फील होगा। तो बिल्कुल यही ग्रेटिट्यूड का भाव हमें भगवान के लिए भी करना है, भगवान के लिए भी यही ग्रेटिट्यूड का भाव जो है हमें रखना है फ्रेंड्स। और फिर दूसरी बात ये है कि हमें ये कौन डिसाइड करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि समाज में अच्छे और बुरे को लेकर जो डेफिनेशंस बनाई गई हैं वो समय के और स्थान के अनुरूप तो बदलती रहती हैं। जैसे कि आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो औरतों का घर से बाहर जाना, घर से बाहर जाकर काम करना, ड्रिंक्स लेना, स्मोक करना और बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ देना, ये बुरा माना जाता था। पर आज आप सोसाइटी में ये चीजें आम देखते हैं, तो कोई बुरा नहीं मानता है। इसी तरह से अगर चाइना की बात करें तो चाइना में जीवित जीवों को, कीट पतंगों को खा जाते हैं, वहां ये सब अच्छा माना जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो ये सब चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। और फ्रेंड्स, वैसे भी जितने भी लोग आप देखते हैं या जिनसे भी आप बात करते हैं, वो सब यही कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि वो बुरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना लाभ हानि देखते हुए, मतलब अपना फायदा और नुकसान देखते हुए ही अच्छा अच्छे की डेफिनेशन अपने आप ही घड़ लेते हैं। मनगढ़ंत तरीके से हम अच्छे को जो है प्रचारित करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए रावण का। सीता मैया को हर के ले गया है ना, हरण करके ले गया, और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए हिरण्याक्षपु का, अपने ही पुत्र को कितनी प्रताड़ना दी, है ना, पहाड़ की चोटी से फेंक दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलने के लिए छोड़ दिया, फिर जलती आग में छोड़ दिया। क्या क्या नहीं किया अपने पुत्र को प्रताड़ित करने के लिए, लेकिन वो भी यही कह रहा है कि वो अच्छा कह रहा है। कहने का मतलब कि जो हमें सूटेबल होता है वो हमें अच्छा ही लगता है, हमारे लिए सूटेबल है वो हमारे लिए अच्छा है, और जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है वो हमारे लिए बुरा है। तो हमें ये कौन बताएगा ये अच्छा क्या है बुरा क्या है ना, अच्छे कर्म क्या होते हैं, कैसे करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें हम जो हैं वो अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपने स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ही जान सकते हैं, क्योंकि अच्छा जो है ना वो कभी बदलता नहीं है, वो सदैव सदैव ही रहता है, वो सत्य है, नित्य है, निरंतर है। इसलिए स्क्रिप्चर्स में जो कर्म की परिभाषा बताई गई है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 9 को पढ़ते हैं, जहां भगवान हमें कहते हैं कि भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए फल की आकांक्षा से मुक्त होकर ध्यान से अपने नित्य कर्म करो। तो क्या कहते हैं भगवान कि भगवान को खुश करने वाले भाव से हमें कर्म करने चाहिए, और जब हम भगवान को खुश करने वाले भाव से कर्म करेंगे तब हम संसारिक बंधन से मुक्त होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए और फल की आकांक्षा से मुक्त होकर, किसी भी फल की आकांक्षा को ना रखते हुए मन में ध्यान पूर्वक हमें भगवान को खुश करने वाले भाव से ही अपने कर्म करने चाहिए। फ्रेंड्स, कर्म तो हमें करने ही है। तो हम जब ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कौन से कर्मों को हम अच्छा मानते हैं? समाज में पौधे लगाना, धर्मशाला बना देना, हॉस्पिटल बनवा देना, फिर वृद्ध आश्रम बनवा देना, फिर अनाथालय बना देना, गरीब बच्चों को कपड़े दान दे देना, गरीब बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड कर देना, इन सब कार्यों को भी ही बेसिकली समाज में जो है वो अच्छे कर्म माना जाता है। लेकिन अगर हम सोचें तो क्या ये अच्छे कर्म हम हर समय कर रहे होते हैं? क्या 24x7 आवर्स हम इन सब कर्मों को करते हैं? सोचने की बात है फ्रेंड्स। तो आप सोच के बताइए कि सच में हम इन कर्मों को 24x7 आवर्स तो नहीं कर सकते। कुछ लोग इन कर्मों को, अच्छे कर्मों को, साल में 1 या 2 बार, कुछ लोग इन कर्मों को महीने में 1 या 2 बार, और कुछ लोग इन्हीं अच्छे कर्मों को हफ्ते में 1 बार करते होंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी समय में हम क्या करते हैं? हमारा मन तो हमें फ्री बैठने नहीं देता, वो तो अंदर टर 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 करता ही रहता है। तो फिर उस समय हम क्या कर रहे होते हैं? उस समय हम जब भक्ति से जुड़े नहीं होंगे तो फिर कहाँ जुड़े होंगे? माया में ही जुड़े रहेंगे। और फिर माया की बातें ही सोचेंगे, उसने मेरे साथ ये कर दिया गलत, है ना, उसका पति बहुत अच्छा है, उसकी फैमिली में बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, मुझे तो अपने घर के लिए ये चाहिए। मतलब कितनी ही डिजायर्स और कितने ही विचार अंतःकरण में उस समय चलते रहते हैं। सपोज करो आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल करते समय आप कौन से अच्छे काम कर रहे हो? ट्रैवल करते समय तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होते, तो फिर उस समय अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसे ही विचार मन में चलते रहेंगे नेगेटिव। तो इस तरह के विचार जब हम कुछ काम अच्छे करते हैं और बाकी समय हमारे अंतःकरण में इस तरह के जब विचार जो हैं वो चलते रहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब इस तरह के विचार जो हैं वो हमें बंधन में बांध देते हैं, है ना। मतलब अच्छे कर्म हम कर रहे हैं तो वो भी पुण्य कर्म, मतलब पुण्य के पुण्य कर्म बन जाएंगे हमारे, और पुण्य कर्म भी हमें बंधन में ही बांधते हैं, क्योंकि पुण्य का फल लेने के लिए, अच्छा फल प्राप्त करने के लिए हमें दोबारा से जन्म लेना ही पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि पुण्य के परिणाम स्वरूप आपको मनुष्य मनुष्य तन मिले, अच्छे परिवार में जन्म मिले, या फिर अगर आपने बहुत अधिक पुण्य किया तो हो सकता है आपको देव पद भी मिल जाए, देवता का पद मिल जाए, लेकिन उसकी भी तो समय सीमा है, उसमें भी तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इत्यादि, इन सब विकार, ये सब विकार हैं, है ना, इनका बंधन है। जन्म लेते हैं तो कितना कष्ट होता है, 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ता है, कितना कष्टदायी है जीव के लिए। मृत्यु होती है तो कहते हैं 100 बिच्छुओं के डसने के जितना जो है हमें दर्द होता है, तो तब भी जीव कितने दर्द से गुजरता है। फिर बुढ़ापा आता है तो साथ में ही बीमारियां भी आ जाती हैं, तो उस समय भी कितना दर्द और तकलीफ से जीवन गुजरता है। और बुढ़ापे के समय में हम फिर ये जो अच्छे कर्म है वो तो नहीं कर पाते हैं, है ना, या हम बीमारी से जकड़े हैं, किसी टफ सिचुएशन है, तब भी तो हम ये वेल नाउन अच्छे कर्म जिसको हम कहते हैं वो तो नहीं कर सकते, है ना। तो हम जो है ये अच्छे कर्म करके, अच्छे कर्म हमें बंधन से मुक्त नहीं करते हैं, बल्कि अच्छे कर्म हमें बंधन में बांधते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति से जुड़ जाए तो उसको ये समझ आ जाती है कि भक्ति से जुड़ने से व्यक्ति को समझ आती है कि ये जो जीवन है ना, ये तो बंधन का कारण है, और ये जीवन मुझे 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो मुझे इस जीवन का सदुपयोग करना है। क्यों? क्योंकि इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है वो परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति है, तो क्यों ना मैं इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति, उसके लिए प्रयास करूं। तो फ्रेंड्स, भक्ति भक्ति ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं, हमें कर्म तो करने हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये सोचते रहें कि भगवान की कृपा से मैं ये सब करने के काबिल हूँ, और भगवान को खुश करने वाले भाव से ही हम कर्म करें, और फिर भक्ति युक्त कर्म हम दिन में जो 24x7 आवर्स हम कर सकते हैं, पूरा दिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि दिन भर आप अपने घर के कार्य कर रहे हैं, तो घर के कार्य करते हुए, अपने सारे काम करते हुए हम ये याद रखें कि भगवान की कृपा से मेरे मुझे ये सुंदर घर और परिवार मिला है, तो प्रभु मैं इनकी सेवा आपकी दी हुई ड्यूटी समझ के करूं अच्छे मन से, तो फिर आपके मन में कोई इरिटेशन, कोई भी थकावट भी आपको फील नहीं होगी, आप इरिटेटेड भी नहीं होंगे, और आप अब बहुत खुशी खुशी अपने कामों को करेंगे भगवान का नाम लेते हुए। इसी तरह आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो ये ना सोचिए कि मैं ये बच्चे बड़े हो गए मुझे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और अंततः मुझे जो है वो धन कमा के देंगे। मतलब फल की आकांक्षा से जब हम कर्म करते हैं तो वो बंधन का कारण बनते हैं। अब फल की आकांक्षा छोड़ दीजिए और ये सोचते हुए कर्म करिए कि भगवान ने मुझे ये बच्चे दिए हैं, तो मैं इनका लालन पालन इस ढंग से करूं कि वो बड़े होकर समाज कल्याण में अपना योगदान दें, वो अच्छे कर्म करें, अच्छे नागरिक बने देश के। तो इस भाव से जब हम कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म जो है वो भक्ति बन जाता है, और जब हमारा हर कर्म जो है, जब हम इस तरह से अपने हर कर्म को करते हैं, भक्ति में बन जाते हैं, तो वही भक्ति में कर्म, ये तो दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो हमारे करोड़ों जन्मों में किए हुए पापों से भी हमें मुक्त मुक्ति दिलाते हैं, है ना। इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कोई वकील है, कोई पॉटर है, कोई अन्य कितने ही मतलब कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, तो वो सब भी अपने काम करते हुए ये भाव रखें कि परमात्मा की कृपा से मुझे ये योग्यता मिली है, तो भगवान के प्रति थैंकफुलनेस का भाव करें कि प्रभु धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं समाज के कल्याण में अपना कुछ योगदान दे पा रहा हूं। तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, फिर समाज से जो ये जो करप्शन है वो भी दूर होगी, क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हुए अपनी ड्यूटीज को निभाएंगे तो हम कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे, तो समाज से करप्शन भी खत्म होगी और हमारे कर्म भी दिव्य बनेंगे, हम कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि भक्ति का जो है कर्म के साथ अगर हम भक्ति को जोड़ देते हैं, तो वही भक्ति जो है वो दिव्य कर्मों में हमारे दिव्य हम भक्ति हमारे कर्मों को दिव्य बना देती है, और दिव्य कर्म हमारे कोटि कोटि जन्म के पापों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। यही चीज भगवान चैप्टर नंबर 5 की श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, हरी हरि बोल। भगवान कहते हैं, भक्ति में रत व्यक्ति, भक्ति में रत व्यक्ति समस्त कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करता हुआ पूर्ण शांति को प्राप्त करता है, परंतु जो भगवान से जुड़ा नहीं है वह कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है और फल में असक्त होने से बंधन में पड़ जाता है, और फल में असक्त होने से बंधन में पड़ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने कहा कि फल की इच्छा त्याग के अगर हम कोई भी अपने कार्यों को कर रहे हैं, तो मन में ये ना सोचे कि इसे करने से मुझे ये चीज की प्राप्ति होगी या ये मैं करूं तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। सपोज करो हम कोई व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल बनाता है ना, तो वो ये सोच के बना रहा है कि हॉस्पिटल बनाऊंगा और इसके बनाने से समाज में लोगों में मेरा मान इज्जत बढ़ेगा, लोग मुझे जानने लगेंगे और फिर इससे मुझे बाद में धन की भी प्राप्ति होगी। लेकिन एक व्यक्ति दूसरा है जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके पास भी बहुत धन, वो भी हॉस्पिटल बनवाता है, और ये सोच के कि प्रभु आपने मुझे इतना धन दिया है, मैं इस हॉस्पिटल का निर्माण कर रहा हूँ ताकि यहाँ समाज में जो बीमारियों से ग्रस्त दुखी लोग हैं वो आए और उनका इलाज हो, उनको उनके मन शांत हो, उनका रोग कट जाए। इस भाव से, समाज कल्याण के भाव से ये सोचते हुए कि भगवान ने मुझे ये इतना दान दिया है तो मैं क्यों ना इसे अच्छे काम में लगाऊं। तो जब हम इस भाव से अपने कर्म को करेंगे तो हमारे ये जो कर्म है ना वो हमें लाखों करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप कर्मों से के बंधन से भी मुक्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स दूसरी तरफ जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है ये भी भाव रहता है हमारे अंदर कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि हम भक्ति से जुड़े नहीं होते, तो जब हमारे अच्छे काम के लिए हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम सोचते हैं कि वाह, मैं तो सच में, हमारा अहंकार और भी उच्च लेवल पे पहुंच जाता है कि वाकई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना। और हम सोचते हैं कि दूसरे जो हैं अब हमारी प्रशंसा करें और हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं दूसरों से, है ना। तो अहंकार का भाव बढ़ता है अगर हम अच्छे कर्म करते हुए भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है। इसके साथ ही हमारे अंदर नेम और फेम पाने की चाहत भी बढ़ती है अगर हम भक्ति नहीं करते हैं। तो राजसी गुण, भक्ति नहीं करते तो राजसी गुण और तामसी गुण में रहते हैं, तो राजसी गुण में हमारे अंदर नेम और फेम पाने की भी इच्छा रहती है, तो नेम और फेम पाने की चाहत में ही हम अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि दुनिया में लोग हमें जाने, हमारी प्रेज करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारे आसपास घूमें, हमें हमारे आगे नतमस्तक हो जाएं, हम इतने अच्छे काम कर दें। तो इस भाव से भी जब हम भक्ति नहीं कर रहे होते तो ये भाव होता है, वो भी हमारे बंधन का कारण बन जाता है ना। और अगर कोई गलती से भी हमारी अच्छे काम करने पर हमारी निंदा कर दे, ये भैया ये यहाँ पे तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो फिर हम बहुत लो फील करते हैं, है ना। प्रशंसा, क्योंकि हमने तो प्रशंसा पाने की चाह से काम किया, और जब कोई निंदा कर देता है तो हम विचलित हो जाते हैं, और कई बार हम इतने विचलित हो जाते हैं कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, और अंततः इसी निंदा की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं कई बार डिप्रेशन की अवस्था में भी चले जाते हैं। तो सोचिए, अगर अच्छे कर्म के साथ भक्ति नहीं जुड़ी होगी तो क्या असर होगा हमारा, है ना। वो इसी तरह से जब हम भक्ति भाव में कर्म करते हैं तो कोई प्रशंसा करे या निंदा करे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। और भक्ति भाव में कर्म करने से हमारे अंदर दैवी गुणों का विकास होता है, दिव्य गुणों का विकास होता है, क्षमा, प्रेम, करुणा, दया, है ना, विनम्रता, ये सारे गुण भक्ति करने से हमारे हृदय में जागृत होते हैं। क्योंकि परमात्मा के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, तो परमात्मा तो दिव्य गुणों के भंडार हैं, तो जब भगवान से जुड़ेंगे तो उनका उनकी छवि, उनके गुण जो है हमारे अंदर भी प्रकाशित जरूर होंगे। इसलिए भक्ति करने से हमारे अंदर दिव्य गुणों का विस्तार होता है, जिससे हमारा जीवन जो है वो और भी खुशहाल बन जाता है, हमें जीवन जीने में आनंद आने लगता है। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे भक्त हमें कहते हैं ना कि उन्हें तो बहुत ही आनंद आ रहा है, क्यों, क्योंकि उनके जीवन में भगवान का नाम जप बढ़ गया है, भक्ति बढ़ गई है, इसीलिए उन्हें आनंद आ रहा है ना। तो ये जो आनंद है ना, वो ऐसा नहीं कि अच्छे कर्म करने से हमें खुशी नहीं मिलती है, अच्छे कर्म करने से भी खुशी मिलती है, लेकिन वो जो खुशी होती है ना वो क्षणिक होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से जो हमें आनंद मिलता है ना, वो कई गुना, मतलब अच्छे कर्म करने से जो हमें खुशी मिलती है उससे कई गुना अधिक होता है। जैसे कि सपोज करो, अच्छे कर्म करने करके आपने 100 रुपीज जितना आनंद पाया, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्मों के साथ भक्ति को छोड़ दिया तो आपका आनंद जो है कई गुना बढ़ गया, 1 लाख करोड़, इतना इस तरह से इतना ज्यादा बढ़ गया। तो आप सोचिए कि वो आनंद की अनुभूति हमें अच्छे कर्म करने से तो नहीं हो सकती, तो वो आनंद की अनुभूति हमें तभी होती है जब हम अपने जीवन में भक्ति को जोड़ते हैं। और भगवान स्वयं भी हमें यही कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति से मेरे साथ जुड़ता है, जो भक्त अनन्य भक्ति करके मेरे साथ जुड़ता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मतलब भगवान को भी जो अनन्य भक्ति में लगा हुआ भक्त ही अति प्रिय है। बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं उनके अच्छे कार्यों के लिए, तुलसीदास जी, कबीर जी, रहीम जी, है ना, ये सब अच्छे संत, इन्होंने समाज कल्याण में अपना बहुत योगदान दिया, है ना। तो कई बार रहीम जी जो थे वो बहुत, कई बार जब लोगों को कुछ देते थे तो लोग जो है अपनी आंखें जो है नीची कर लेते थे, इतने महान संत, और जब लोगों को कुछ देते थे तो अपनी आंखें नीची कर लेते थे। तो एक बार तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आप अपनी आंखें नीची क्यों कर लेते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था बहुत ही प्यारा कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे, लोग भ्रम हम करें तासो नीचे नैन। तो कहने का मतलब कि संत, जब जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए भगवान के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसकी विनम्रता, उसके अंदर की विनम्रता इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, और अच्छे कर्म करने वालों को समाज में कम याद किया जाता है, लेकिन अच्छे कर्म के साथ अगर कोई भक्ति में कर्म करता है तो उसको अनंत युगों तक उसको याद किया जाता है, जैसे मैंने नाम बताया। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमें ये सोच के घर पर नहीं बैठ जाना कि मैं तो बहुत अच्छे काम करती हूँ, मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, करता हूँ या करती हूँ और मुझे अच्छे काम, अब मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे काम के साथ भक्ति को ऐड कर लेना है, ये विचार को ऐड कर लेना है कि मैं जो भी अच्छा कर पा रहा हूँ वो प्रभु की कृपा से ही कर पा रहा हूँ, और भगवान को खुश करने वाले भाव से अपने कर्म को करना शुरू कर देना है। हम अपना हम जो भी कर्म करें ये सोचें कि भगवान मेरे कर्म से कैसे खुश होंगे। देखिए भीष्म पितामह है ना, द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देख रहे थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के साथ जुड़े रहे। ये नहीं सोचा कि भगवान मेरी प्रतिज्ञा से खुश होंगे या कि इस समय द्रौपदी को चीरहरण से जब मैं बचाऊंगा तब खुश होंगे, ये नहीं सोचा है ना। और इसी तरह से जो जटायु थे जिन्होंने सीता मैया को जो है रावण को ले जाते हुए देखा था, तो उनके साथ युद्ध किया था, तो उनके साथ युद्ध करते हुए अपने जो है वो पंख को कटवा लिया था और धरती पे बैठ गए थे। तो उनके मृत्यु के समय भगवान जो थे, जब वो प्राण छोड़ने वाले थे तो भगवान उनके करीब पहुंचे। उन्होंने उन्हें सीता मैया के बारे में बताया कि कौन सीता मैया को उठा के ले गया है, और फिर भगवान ने जटायु को अपने जंघाओं पे रखा, उनको बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और अंततः उनका संस्कार भी स्वयं जाके किया। लेकिन उधर भीष्म पितामह, आप सब जानते हैं, तीरों की छैया पे कितने दिन तीरों की छैया पे पड़े रहे, कितना कष्ट उन्हें हुआ है ना, कितना कष्ट उन्हें उस समय झेलना पड़ा है ना। और ये सोच, और उन दिनों में वो कितना रोए, क्यों? क्योंकि उनका एक ही कर्म जो था वो इतना गलत था कि उन्हें उस समय वो याद आ रहा था। तो फ्रेंड्स, हमें अपने कर्मों को भक्ति में बनाना है, ना कि ये सोचते हुए अपनी भक्ति के मार्ग में भक्ति को छोड़ देना है कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ या करती हूँ। तो अंत में मैं चैप्टर नंबर 16 पे चलते हैं, हरी हरी बोल, चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 24 को पढ़ते हैं, जहां भगवान कहते हैं, इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए तुम्हें शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। कर्तव्य क्या, तुम्हारा कर्तव्य है क्या, अकर्तव्य क्या नहीं करने योग्य है तुम्हारे लिए, इसका निर्णय करते समय हमें शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रों में जो कहा गया है उसे समझकर इस संसार में कर्म करना उचित है। शास्त्रों में जो कहा गया है उसे समझकर इस संसार में कर्म करना ही उचित है। अपने मन मुताबिक ये अच्छा है ये बुरा है ये सोच के कर्म करना सही नहीं है, जैसा कि द्रोणाचार्य ने किया, भीष्म पितामह ने किया महाभारत में। तो हमें निर्णय जो है वो शास्त्र जैसे हमें बता रहे हैं, भगवान कृष्ण जैसे हमें बता रहे हैं कि हमें अपना हर कर्म भगवान को खुश करने वाले भाव से, अहम के भाव के बिना, अहंकार को छोड़ के है ना, मैं के भाव के बिना, भगवान को खुश करने वाले भाव से, बिना फल की इच्छा से करना है। तभी हमारा हमारा हर कर्म जो है वो भक्ति में हो जाएगा, और अंततः हम इस ऐसे कर्म करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। आप सबको गोलक एक्सप्रेस परिवार की ओर से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इस सत्संग में स्वागत है और बहुत ही बढ़िया आज का टॉपिक, अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति की क्या जरूरत है। ये मिथ मेरा भी था। गोलक एक्सप्रेस को अगर ज्वाइन करने से पहले मैं भी यही सोचती थी, जैसे बचपन से हम सोचते हैं ना कि बस ठीक है अच्छे काम कर्म कर लेते हैं, इसमें भक्ति की क्या जरूरत है। तो इस पे बहुत अच्छे से हमें निखिल जी ने गाइड किया हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें श्लोक के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से हमें समझाया कि किस तरह से भक्ति की भी हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है। और अगर ये मिथ हमारे नहीं क्लियर होते ना, तो हमारा वही हाल होता जैसे एक बंजर भूमि होता है, उसको उपजाऊ बनाने, उसको पहले फसल उगाने के लिए उसको जैसे उपजाऊ बनाना पड़ता है ना, इसी तरह से हम भक्ति मार्ग पर चलने से पहले जब तक हमारे गोलक एक्सप्रेस के द्वारा ये मिथ दूर ना होते, तो शायद हम उस अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही ना कर पाते, भक्ति के लिए वो प्यार वो उमंग हमारे में ना जाग पाती। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच निखिल जी जिन्होंने गोलक एक्सप्रेस का फाउंडेशन रखी और हमें इसके माध्यम से हमारे सारे मिथ्स दूर हो रहे हैं और भक्ति के लिए हमारा भाव बढ़ रहा है।
और आज भी निधि जी ने इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से हमें बताया और सुधा जी ने भी बहुत अच्छे से श्लोक की रीडिंग की। थैंक यू सो मच निधि जी एंड सुधा जी। तो इस मिथ पे जो मैं भी बोल रही हूँ कि मेरा भी ये मिथ था कि अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति की क्या जरूरत है, तो इसको भी मैंने जैसे जब अपने पे बात आती है ना तो हम बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे एग्जाम्पल से जैसे निधि जी ने भी आज बताया कि जैसे एक बच्चे को, आजकल तो हम भी स्टेज पे आ चुके हैं कि जैसे बच्चे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं या बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं, तो हमें बच्चा वहां पे बहुत अच्छे कर्म भी कर ले कुछ भी कर ले, बट अगर वो हमें भूल जाए, हमें याद ही ना करे, कभी हमें फोन ही ना करे, तो हम सोचे कि हमें कितना बुरा लगेगा, है ना। इसी तरह से हम लोग तो परम पिता परमात्मा की संतान है, हम तो सब उस परमेश्वर के बच्चे हैं। हम बोलते हैं ना तुम आत पिता, परमात्मा ही हमारे माता पिता है ना। तो हम क्यों अपने उस असल माता पिता को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस जगत में किस लिए भेजा है? अच्छे कर्म करने के लिए तो भेजा है, लेकिन साथ साथ उनको भी तो याद रखें, हमेशा परमात्मा का नाम जप भी तो याद में रखें। तो इस पॉइंट से मेरी ये बहुत अच्छे से ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। और सेकेंडली जैसे भक्ति करते हैं, अगर हम सिर्फ सोचे कि हम सॉरी अगर हम सोचे कि हम सब अच्छे कर्म कर लेते हैं तो हम लोग तो उस कर्म का क्रेडिट सारा खुद ही लेंगे, हमारे हमारे में कितना अहंकार आ जाएगा, हमारे जो अंदर की बुराइयां हैं, गुस्सा या कोई नेगेटिविटी, वो थोड़ी ना अच्छे कर्म करने से दूर हो जाएगा, है ना। हमारे में तब भी गुस्सा भी रहेगा, हमारे अंदर के जो जेलस है या कोई कंपैरिजन का नेचर है वो तब भी रहेगा, क्योंकि हम हर टाइम तो अच्छे कर्म नहीं करते और हमारी नजर में तो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, अदरवाइज तो हम एक मिश्रित कर्म ही करते हैं, कुछ अच्छे बुरे की हमें सही से पहचान नहीं होती। तो हमारे अंदर अगर हम इस चीज का क्रेडिट खुद लेते रहेंगे तो हमें तो लगता है कि हमें सब अप्रिशिएट करें, हमारा नेम एंड फेम हो, तो बस हमारे नेम और फेम के चक्कर में हमारा अहंकार का लेवल, ईगो का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और ये सच में हम लोग फील करते थे पहले कि अगर हम हमें क्योंकि हमें लगता था कि अगर हम कई बार कुछ अच्छा काम कर भी रहे हैं, जैसे मैं हमेशा मेरे को लगता था कि जैसे ना अच्छा कर्म कर लो, मन साफ रखो, किसी को बुरा मत कहो, बस इतना बहुत है। लेकिन क्या हम ऐसा करते थे हर टाइम? हर टाइम तो ये चीज नहीं कर सकते ना। जैसे बहुत अच्छा अभी निधि जी ने भी हमें बताया, निखिल जी भी बताते हैं कि अच्छा कर्म तो हम वंस इन अ मंथ या वंस इन अ वीक कर लेंगे, लेकिन बाकी के टाइम में हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपनी ईगो में ही हैं, हम तो अपने अहंकार में ही हैं। तो उस चीज को कैसे कवर अप करना है कि हम हर टाइम भक्ति से जुड़े रहें और जो भी कर्म करें उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की खुशी के लिए करें। और इस चीज को एक मैंने और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझना, जैसे हमें मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं ना, उसको याद करते हैं तब भी हमारा वो सम सही से सॉल्व होता है। तो इस चीज को भी मैंने एक फॉर्मूले से समझा कि अच्छा कर्म मीन्स सात्विक कर्म और अच्छा जन्म, है ना। अच्छा कर्म इज इक्वल टू सात्विक कर्म, अच्छा कर्म इज इक्वल टू अच्छा जन्म। हमें अच्छा जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है भगवान तक पहुंचना, गोलक धाम तक पहुंचना, वो कैसे, वो किस फॉर्मूले से आएगा? वो आएगा अच्छा कर्म, क्योंकि भगवान जी ने कर्म को भी प्रधानता दी है कि कर्म भी करना बहुत जरूरी है। तो अच्छा कर्म प्लस भक्ति भाव तो इज इक्वल टू गोलक धाम। तो हमारा जो परम लक्ष्य है गोलक धाम तक पहुंचना, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए और उसमें ऐड करना है भक्ति भाव, वो बन जाते हैं हमारे दिव्य कर्म। तो दिव्य कर्म जो कर्म है वो एक ऐसे कर्म है, जैसे हमने श्लोक के माध्यम से भी समझा, जो दिव्य कर्म है वही ऐसे कर्म है जो हमें पाप और पुण्य के कर्म के बंधन से मुक्ति दिला देते हैं और अपने आप को हम परमात्मा से जोड़ के अपने हर कार्य को बहुत ही कुशलता से कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव वे से कर सकते हैं। तो अपने काम को ही अगर हमने बहुत अच्छे से करना है, इफेक्टिव वे से करना है ना, तो उसके लिए हमें परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही बढ़िया मेरे लिए, ये तो मतलब लगता है कि इस चीज को समझ के कि हमारा कितना बड़ा ये मिथ दूर हो गया, नहीं तो हम लोग तो बस स्क्रैप में ही फंसे रहते हैं। ठीक है, हम दूसरों के चेहरे पे स्माइल ला रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, कभी कभी कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस दैट्स इट, हो गया हमारी लाइफ, हम बहुत अच्छे हैं। बट नहीं, परमात्मा के बहुत ही फेवरेट बच्चे बनना है ना, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म के साथ भक्ति भाव को ऐड करना ही करना है। और इसका एक बहुत अच्छा एक और मैं एग्जाम्पल देख के समझा सकती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा। मतलब मुझे लगता है कि हाँ लाइक इस तरह से हमें करना चाहिए, इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं ना, हम सोचे कि एक अच्छा कर्म या दो अच्छे कर्म, हम एक अच्छा कर्म करते हैं 1-0, दो अच्छे कर्म करते हैं 2-0, इस तरह से अच्छे कर्म करते करते हम 0-0-0 बढ़ा देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अलग से जीरो की क्या वैल्यू है, हमने 10 अच्छे कर्म भी कर लिए, 10 जीरो भी आ गई, लेकिन 0 × 0 तो जीरो ही रहना है ना, तो उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन जब उसमें हम भक्ति का एक ऐड कर देते हैं, भक्ति को ऐड कर लेते हैं, वो एक अच्छा कर्म है तो 10, और 10 अच्छे कर्म है तो 10 जीरो के साथ 1, तो हमारी कितनी कमाई बढ़ गई, हम कितने रिच हो गए ना, हम सोचे तो कितने हमारे दिव्य कर्म बढ़ गए जो हमने उसमें भक्ति को ऐड कर लिया। तो इस चीज को भी मैंने इस चीज से भी बहुत रिलेट करके समझने की कोशिश की कि अपने स्मित को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल पाऊं कि मुझे अच्छे कर्म के साथ भक्ति भाव को ऐड करना ही करना है। बहुत ही प्यारे हमारे भागवतम में भी हमने ये श्लोक बहुत सारे पढ़े। उद्धव जी ने पूछा था कि भक्ति के लिए मतलब कुशल क्या है, भक्ति या कर्म योग मतलब क्या कुशल है, तो भी बताया गया कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। चाहे आप कुछ भी तपस्या कर लो, कोई भी यज्ञ कर लो, वैदिक कर्म कर लो, या फिर बहुत अच्छे कर्म करते जाओ, लेकिन जब तक आप उसमें शुद्ध भक्ति को ऐड नहीं करोगे, आप भगवान के फेवरेट बच्चे नहीं बन पाओगे। इसको बहुत एक प्यारी स्टोरी से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा था, मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी सुनाऊंगी। एक राजा था और उसको अपने बहुत अच्छे से अपने काम करता था, प्रजा की बहुत सेवा करता था, बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े सबकी सेवा करना, सबकी जो भी उसके पास हेल्प के लिए आना फटाफट से उसकी हेल्प कर देना, बहुत ही अच्छे कर्म करता था। तो ऐसे अच्छे कर्म करते करते एक दिन वो ऐसे मतलब करता रहता था हमेशा, ठीक है एक दिन जंगल में गया, पर वो उसके मन में भक्ति के लिए भक्ति भाव बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में गया, उसको वहां पे एक देवदूत मिले और देवदूत जी को उन्होंने प्रणाम किया और देखा कि देवदूत के हाथ में एक बुक है। तो उन्होंने पूछा कि आपके हाथ में ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वो वाली बुक है जिसका जो मतलब जो परमात्मा के धाम तक जाएंगे, गोलक धाम तक जाएंगे, इस वैकुंठ धाम तक जाएंगे, इसमें उन लोगों के नाम है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप देखो कि मेरा भी इसमें नाम है। उसको लगा कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरा तो नाम होगा ही होगा। जब उसका देखा गया, पूरी बुक को पलटा गया, तो उसका कहीं भी नाम नहीं था। तो वो बड़ा निराश हुआ। तो तब उसने देवदूत से पूछा मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको भक्ति आप नहीं करते हो, आप अच्छे कर्म जरूर कर रहे हो, लेकिन भक्ति की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने उन्होंने भक्ति का उन्होंने भक्ति भाव उनके अंदर जागृत किया। तो उसके बाद से उन्होंने सोचा मैं जरूर भक्ति करूंगा। तो उसके बाद से वो अपना भक्ति करने लग गए और एक दिन रथ लेके उन्होंने सोचा कि मैं अपने काम का छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ और भक्ति की तरफ चल पड़ता हूँ। वो एक दिन अपना रथ लेके भक्ति की और भक्ति मार्ग पर वन में चले गए। जाने लगे थे कि रास्ते में उनका मंत्री उनको मिला, घोड़े पे भागता हुआ आया मंत्री उनका, और उसने बोला कि इस राज्य में बीमारी फैल गई है और सब बहुत बीमार हैं और सब ऐसी कोई बीमारी है कि कोई बच नहीं पा रहा है। तो राजे ने फटाफट से अपना रथ मोड़ा, अपने सारे जो भी उसके हेल्प के लिए उसके पास धन था वो एकत्रित किया, मेडिसिन मंगाई और अपने हाथों से सबकी सेवा की। और जबकि सबकी सेवा करते हुए उस पर उसका भाव क्या था, वो साथ साथ परमात्मा का नाम जाप कर रहा था और भक्ति उसके अंदर से यही था कि हे परमात्मा सबको जल्दी से ठीक करो, और खुद भी वो अपने आप को एक निमित भाव से भक्ति करते हुए ही कर्म कर रहा था। तो इस तरह से करते करते सब वहां पे कुशल मंगल हो गया, सब ठीक हो गए। तो उसके बाद वो जब दोबारा से ऐसे एक दिन से चलते चलते फिर वन में गया, तो वहां पे इस बार उसको देवदूत जी मिले। तो उनके हाथ में दो बुक्स थी। तो उन्होंने पूछा देवदूत जी से कि आपके हाथ में आज दो पतली पतली सी बुक है, वो इस बार पिछली बार तो बहुत बड़ी सी बुक थी, इस बार बहुत छोटी छोटी और पतली सी बुक्स थी। वो कहते हैं कि आपके हाथ में ये इतनी छोटी छोटी बुक्स हैं, पतली सी बुक्स हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बुक किस चीज की है। तो उन्होंने बोला कि इसमें उस व्यक्ति का नाम है जो अपना कर्म निष्ठा से करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप देखो इसमें मेरा नाम है। तो देखा तो सबसे ऊपर राजा का नाम था। तो राजा बहुत खुश हुआ कि हाँ मैंने अपने कर्म को निष्ठा से करा है, तो थैंक यू, अच्छी बात है मेरा नाम है इसमें। तो उसने पूछा कि अब ये मुझे बताओ जो दूसरी बुक है उसमें क्या है। तो उसमें था कि उसमें ऐसे लोगों के नाम है जो भगवान के फेवरेट हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, और उसमें बहुत ही कुछ लोगों के ही नाम थे। तो उसमें जब उसने बोला कि इसमें अब चेक करो, इसमें मेरा नाम है, तो जब उसको चेक किया तो उसमें भी राजा का नाम ही सबसे ऊपर था। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो राजा ने पूछा कि मैं तो भक्ति इतनी करी ही नहीं है, मैंने तो अभी अभी आपके कहने से भक्ति शुरू की थी और इसमें मेरा नाम सबसे ऊपर है, ये कैसे? तो उन्होंने बताया कि आपने अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से किया, बिना फल की इच्छा के किया, और सबकी सेवा करते हुए अपने अंदर भक्ति भाव को जागृत करते हुए किया, सब परमात्मा को अपने कर्म अर्पित करते हुए किया, तो आप शुद्ध भक्ति करते हुए और अच्छे कर्म करते हुए परमात्मा के गोलक धाम में भी पहुंचेंगे और आप भगवान के भी फेवरेट बन चुके हो। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म के साथ भक्ति भाव को ऐड जरूर करना है, दोनों अपोजिट नहीं है, दोनों इकट्ठे ही लेके हमें चलना है। अच्छे कर्म प्लस भक्ति भाव इज इक्वल टू गोलक धाम। तो गोलक धाम तक जाना है तो हमें अच्छे कर्म भी करने हैं और भक्ति भाव को भी अपने अंदर जागृत करना है। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम अपने रिव्यू सेगमेंट की ओर और जानते हैं प्रीति रावत जी से देहरादून चलते हुए उनके विचार। हरी हरी बोल प्रीति जी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ज्योति जी। हरे हरी बोल एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल भक्ति से जुड़े मिथ्स पे चर्चा चल रही है, तो जो आज का मिथ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी को कभी ना कभी ये सुनने को मिला होगा। तो निधि जी के माध्यम से ये क्लियर हुआ कि हमको अच्छे कर्म तो करने हैं लेकिन भक्ति से जुड़कर। अब अज्ञानतावश और अहंकारवश हम मान लेते हैं कि हम तो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो मैं भी यही मानती थी। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब किसी ने मुझे कुछ मेरे संग अच्छा नहीं किया, कुछ बुरा कर दिया मेरे साथ, तो मैं क्या करती थी, टिट फॉर टैट वाली, यानी कि जैसे को तैसे वाली पॉलिसी अपनाती थी। और मुझे लगता था कि ये मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन जब मैं भक्ति में जुड़ी और मैंने यहाँ पे सीखा, तो मुझे पता चला कि भाई, अब किसी और के खराब कर्म की वजह से, खराब बिहेवियर की वजह से हम अपने कर्म क्यों खराब करें और हम क्यों दुखी हों उनकी वजह से। तो अब मैंने ये सीखा कि भाई, जिसने मेरे संग कुछ किया है तो मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर देती हूँ। कहती हूँ भगवान आप ही को देखना है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे ही करो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही रहता है। और निखिल जी तो हमेशा कहते हैं कि अगर किसी ने आप पे कुछ कमेंट मार दिया, कुछ बोल दिया, तो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ गया। तो इस बात को मैंने, मुझे बड़ी ये हिट करी बात, मैंने कहा यार सच में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्यों उस आदमी के लिए अपनी शांति भंग करें। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि इग्नोर करो और भगवान को अर्पित कर दो। अब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर्म है, जैसे कि पौधे लगाना और वृद्धाश्रम जाना, अनाथ आश्रम जाना, तो ये अच्छे कर्म माने जाते हैं। तो मेरी भी एक बहुत डीप डिजायर थी कि मैं भी ये अच्छे कर्म करूं, लेकिन कभी इसके लिए मैं टाइम निकाल ही नहीं पाई। लेकिन भक्ति में आने से और जब मैं जुड़ी गोलोक एक्सप्रेस से, तो मैं मेंटोर्स के मोटिवेशन से मेरे अंदर सेवा भाव जागा और मैं गोलोक एक्सप्रेस टीम के साथ मैं रिहैब सेंटर में जाकर अपनी सेवाएं भी दे पाई। और अच्छे कर्म करने से नो डाउट बहुत इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी बहुत ही टेम्पररी होती है। उसका इफेक्ट जो होगा मैक्सिमम 2 या 3 दिन रहता है और इसके लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। अब हम देखें कि अच्छे कर्म कितना कर पाते हैं हम, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या फिर 6 महीने में, साल में एक बार, या फिर कभी भी नहीं। तो मेरा तो वही था कि मैं सोचती थी करूंगी लेकिन कभी हो नहीं पाता था। तो थैंकफुली भक्ति से जुड़ के मैं कर पा रही हूँ। और अब देखें हम कि छोटे बच्चों वाली मदर है, कोई घर में बूढ़ा है, बीमार है, फिजिकली वो इतना फिट नहीं है कि बाहर जा सके, और बहुत ज्यादा कोई बिजी है, तो वो तो कभी अच्छे कर्म कर ही नहीं पाएगा। लेकिन भक्ति, भक्ति तो आदमी हर सिचुएशन में कर सकता है, घर बैठे बैठे कर सकता है, अपनी ड्यूटीज को करते हुए, घर में ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, या फिर हम वॉक करते हुए, या फिर हम ट्रैवल करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, और हमें कहीं वेट करना है, हॉस्पिटल में वेट करना है, तो उस पीरियड में हम क्या इजीली भक्ति कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम अपना नाम जप स्टार्ट कर दिया और प्रभु से कनेक्शन जुड़ गया, तो वो हो गई हमारी भक्ति। अब फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैं उज्जैन गई थी। अब मंदिरों में लाइन में तो भीड़ होती है ना मंदिरों में, तो पहले मैं बड़ा इरिटेट हुआ करती थी कि ये, और इरिटेट करने से, इरिटेशन से होता क्या है, मूड ही खराब होता है। लेकिन इस बार जब मैं होटल रूम से अपना निकली, तो मैं जाप करती हुई गई और लाइन में खड़ी हुई जाप करती रही, दर्शन करते हुए जाप करती रही, और वापस होटल रूम तक जाने तक मेरा पूरा जाप चलता रहा। तो फ्रेंड्स, वो जो ट्रैवलिंग टाइम था, वेटिंग टाइम था, वो मेरा भक्ति में कन्वर्ट हो गया, और उससे क्या फायदा हुआ, मेरी भक्ति भी बढ़ी और मुझे एक इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है वो तो जाप नाम जाप से आती ही है। और हमारे शास्त्र, हमारे धर्म हमें अच्छे कर्म या समाज कल्याण के लिए ही प्रेरित करते हैं। अब भागवतम का जो प्रथम स्कंद है, जो मैंने प्रीति जी के मुंह से सुना था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसमें बताया था कि मनुष्य के लिए सबसे कल्याणकारी क्या है, वो है शास्त्रों का अध्ययन, और शास्त्रों का सार क्या है, भगवान की भक्ति। तो हमारे जो पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, महान ऋषि मुनि या महान राजा हुए हैं, तो उनका तो एम क्या था, भगवान को याद करते हुए अच्छे कर्म करना। तो हमको भी शास्त्रों की बातें हमको माननी है, गुरु की बातें माननी है, भगवान की बातें माननी है। और भक्ति मार्ग में चलने से क्या होता है, हमारे अंदर प्योरिटी आती है, और हमारे जो दिव्य गुण होते हैं जैसे कि सेवा की भावना, क्षमा करना, प्रेम, त्याग, टॉलरेंस, एम्पैथी, ये बढ़ती है। और जब ये दिव्य गुण बढ़ते हैं तो हमारे अंदर सेवा भाव तो जागृत तो होता ही है, साथ ही हमारे अंदर शांति आती है, संतुष्टि आती है, और हम उस परम आनंद को फील कर सकते हैं जो भक्ति से ही मिल सकता है। अच्छे कर्म करने से हमको परम आनंद की हम अनुभव नहीं कर सकते, वो सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहूंगी कि हमें अच्छे कर्म तो करने हैं, लेकिन भक्ति से जुड़कर हमें भक्ति युक्त कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मों में यदि भक्ति भाव है तो हमें कर्मों के परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती, और ऐसा व्यक्ति कभी गलत कर ही नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है, भक्ति कर्म करने, भगवान को याद करो और कर्म अपने करते चलो। तो लास्ट में मैं बोलूंगी, थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, आपने हमें इतना ज्ञान दिया कि हम अच्छे कर्म कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ, एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ उस ज्ञान को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप देहरादून की विजिट कर रहे हैं, उसके लिए हम गोलोकियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ईगर हैं आपसे मिलने के लिए, आपकी वेट कर रहे हैं, आपकी जो यात्रा है बहुत सेफ हो, सफल। थैंक यू सो मच, हरी बोल।
हरे हरे बोल जी, थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया आपकी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल के साथ खुद से रिलेट करके आपने बताया। सच में ये ऐसे ही होता था, हमें भी यही लगता था कि मुझे भी मतलब लाइक मैं अपनी भी बात करूं, मुझे भी यही लगता था कि हाँ अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते थे क्योंकि हमें अपने फाइनेंस से इतना प्यार होता था ना, हमें लगता था कि यार मेरे पास तो अपने लिए ही कम है, मैं अपने पैसों में से कैसे किसी की सेवा कर सकती हूँ, जब भगवान मुझे बहुत ज्यादा देंगे तब करेंगे। और बाकी अच्छे कर्म की बात करो तो हमें शायद अच्छे कर्म की नॉलेज ही नहीं थी कि अच्छे कर्म होते क्या हैं। हमारे लिए तो हम जो करते थे हमारे लिए वही अच्छा है, हमें लगता था कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, तो बस इतना ही था। तो लेकिन जब हम गोलक एक्सप्रेस से जुड़े और हमने स्पिरिचुअल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को भी समझा, तब हमें जब हमने स्पिरिचुअल को अपनी प्रायोरिटी बनाया तब जाके हमें ये चीज रियलाइज हुई कि फाइनेंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें जितना हमारे पास है हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए, और हमारे पास हमें अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित करते हुए हमें अपने तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, और हमें अपने अंदर सेवा करते हुए एक निमित भाव जो आता है वो हमने सिर्फ जब हमने अच्छे कर्म के साथ भक्ति भाव को ऐड किया हमने तब ही सीखा, तभी हमारे मन में आया कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। तो ये जो भाव है हमारे अंदर पहले था ही नहीं, हमारे अंदर तो पहले यही था कि सब कुछ मेरा ही तो है, मैं बहुत थी हमारे अंदर। तो बहुत ही अच्छे से आपने भी प्रीति जी इस चीज को समझाया, थैंक यू सो मच। और कैसे हम इस चीज को परमानेंट ब्लिस फील कर रहे हैं अपने साथ भक्ति को ऐड करके, कैसे हम अनंत की परमानंद की प्राप्ति कर पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं स्वर्ण लता जी की तरफ नूरपुर, और उनसे उनके विचार जानते हैं। हरी हरी बोल स्वर्ण जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से और अपनी तरफ से सबको वैशाखी की शुभकामनाएं देती हूँ। और ज्योति जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे अपनी लर्निंग शेयर करने का मौका दिया। फ्रेंड्स, हम भक्ति में के मार्ग में चलने के लिए बहुत सी अवधारणाएं जो है वो अपने मन में बना लेते हैं, जो कि भक्ति के मार्ग के लिए अवरोधक होती हैं। मैं निखिल जी का इस मंच से बहुत बहुत आभार करती हूँ, उनको सच सच नमन करती हूँ कि जिन्होंने हमें हमारे लिए मिथ बस्टर को बना करके हमारे मन से इन धारणाओं को निकालने में हमारा सहयोग दिया है और हमें भक्ति की ओर अग्रसर किया है। हम पिछले 4 दिन से इन्हीं अवधारणाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज भी हम एक नई अवधारणा, हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, भक्ति की क्या आवश्यकता है के ऊपर हमें आज हमने निधि जी के श्रीमुख से उसका विवेचन सुना। बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञान मिला और मैं भी चाहूंगी कि मैं उसके संबंध में 2 शब्द बोलूं। मैं मूर्मति भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मेरी बुद्धि में वो आए और मैं अपना संदेश थोड़ा सा डिलीवर कर सकूं। क्योंकि जब हम कर्म को, हम अपने काम को भगवान को सौंपते हैं तो वो काम अवश्य सफल होता है। उस स्थिति में हम कर्म नहीं करते हैं, वो कर्म हमारा भगवान कर देते हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं जब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी तो फ्रेंड्स मैं अभी इन्हीं अवधारणा का शिकार थी, इन्हीं से त्रस्त थी, परंतु जैसे जैसे मैं रेगुलर चलती रही गोलोक एक्सप्रेस के साथ तो मेरी अवधारणाएं अब धीरे 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 कम हो रही हैं। अच्छा है, हम अच्छे कर्म करने चाहिए, बहुत अच्छा है, उत्तम है, परंतु क्या हमें भक्ति की आवश्यकता नहीं है? ये गलत है। हमें अच्छे कर्म के साथ भक्ति का योग जरूर करना है। अच्छे कर्म भक्ति के बिना अधूरे हैं, क्योंकि भक्ति का रस एक आंवले के रस के समान है, जो पहले तो कड़वा लगता है लेकिन बाद में वो बहुत मीठा और आनंदमय रस देता है। फ्रेंड्स, कर्म गति टारे ना टरे, अर्थात जो हम हमारे कर्मों का लेखा जोखा है हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। ठीक है, अच्छे कर्म हमें पुण्य देते हैं, हमें उसके बदले में सुख मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा योनि में जन्म मिलता है, लेकिन हमें सदगति नहीं मिलती है। अर्थात हमें संसार में उन कर्मों का भुगतान करने, सुख लेने के लिए भी बार बार संसार में आना पड़ता है। हम जन्म मरण के चक्र भी उसे नहीं निकल सकते हैं। अच्छे कर्म भी हमें कर्म बंधन में डाले रखते हैं। हमें सदगति कब मिलती है? जब हम भक्ति को अपने कर्मों में जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, भक्ति क्या है? अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़कर, भगवान को एड ऑन करके करना, भगवान की खुशी के लिए करना और भगवान के अपने कर्म निष्काम भाव से भगवान को फलों को समर्पित करते हुए करना, यज्ञ रूप में करना, यह भक्ति है। तो कर्मों को फलों से हम जोड़ते हैं तो हमारे कर्म जो है वो ऑटोमेटिकली दिव्य कर्म बन जाते हैं और दिव्य कर्म ही, जैसा कि निधि जी ने बताया, हमें पाप पुण्य के कर्म बंधनों से मुक्त करते हैं और हमें भगवान की शरणागति देते हैं, हमें गोलोक का रास्ता दिखाते हैं। हम संसारिक जीव हमेशा प्रशंसा के, प्रतिष्ठा के इच्छुक रहे हैं। मैं भी चाहती थी कोई मेरी प्रशंसा करे, तो हम कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें हमारी प्रशंसा की जाए, लेकिन प्रशंसा में एक थोड़ा सा अवगुण छिपा है, उसमें अहंकार की बू आती है। जब हम कहते हैं ना कि मैं अच्छा और मेरे कर्म अच्छे हैं, तो क्या है, वो अहंकार को इंगित करता है। और दूसरी तरफ भक्ति क्या सिखाती है हमें? सदाचार सिखाती है, सेवा भाव सिखाती है, विनम्रता सिखाती है, दूसरों की सहायता करनी सिखाती है, खुशियां बांटनी सिखाती है, खुशियां साझा करना सिखाती है। तो सद्भावना जिस व्यक्ति के मन में आती है, जो कि भक्ति के द्वारा ही आ सकती है, तो उस व्यक्ति को अहंकार कभी छू ही नहीं सकता है। अहंकार बस, हम जो भी काम करते हैं हमें पता होता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम यही कहते हैं कि हम ही अच्छे हैं, हम अच्छे ही कर्म करते हैं। पर क्या हम बता सकते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं? जरूरी नहीं है हमारे सारे कर्म अच्छे हैं। दीदी जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें, ज्योति जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमें अच्छे कर्म किया है और हमें उनको कैसे लेना है। तो दुनिया अच्छे कर्मों की परिभाषा जो वो हर दिन बदलती रहती है, जैसे कि नीरज जी ने बताया कि पहले लेडीज का बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता था लेकिन आज अच्छा माना जाता है। तो ये ज्ञान, अच्छे कर्मों का ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? हमें शास्त्रों से मिलता है। तो उसके लिए अच्छे कर्म कौन से हैं, कैसे करने हैं, इसे हम शास्त्रों के अध्ययन से ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना है, हमें शास्त्र पढ़ने हैं, तभी हम जान सकते कि अच्छे कर्म क्या है। अच्छे कर्म बहुत है, जैसे पौधे लगाना, अनाथालय खोलना, अच्छे हॉस्पिटल खोलना, सेवा करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, अंधे को रास्ता दिखाना, बहुत से अच्छे कर्म है जो हम हर समय हम करते हैं। परंतु क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या हम हर समय ये अच्छे कर्म कर सकते हैं? नहीं। जब हम खाली समय में होते हैं या हम पारिवारिक लोग हैं, हमें परिवार की ड्यूटीज भी होती हैं, हमें उनको भी परफॉर्म करना होता है, पर उसके बाद जब खाली समय होता है तो नेचुरली हमारा दिमाग जो है, जैसे निधि जी बताते हैं कि हमारा दिमाग जो विकारों में उलझ जाता है, हम उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन भक्ति, हम उस समय भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। मेरी मेंटर नीलम जी हमेशा कहती हैं, बाहर से ड्रामा मन से रामा करना है हमने, तो हमें हर वक्त भगवान का नाम लेते रहना है और भगवान को याद करते रहना है। ठीक है, अच्छे कर्मों से हमें, अच्छे कर्म हमें भक्ति करने से नहीं रोकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों से हमारे मन में, भक्ति से हमारे मन में हमारा अंतकरण साफ होता है, हमारे में दैवी गुण आते हैं, जो गुण जो है वो हमें अच्छे करने और भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। फ्रेंड्स, अंत में यही कहूंगी कि कोई शक नहीं, अच्छे कर्म बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें हमें भक्ति का तड़का जरूर लगाना है, हमें भक्ति जरूर उसमें ऐड ऑन करनी है, जिससे हमें असीम अच्छे कर्म करने से हमें प्रसन्नता होती है, हमें आनंद मिलता है। लेकिन भक्ति किसके साथ जोड़ करके अच्छे कर्म करने से हमें परमानंद मिलता है। फर्क तीन अक्षरों का है, बीच में परम है, लेकिन आनंद और परमानंद में बहुत अंतर है। आनंद जो है वो घटता बढ़ता रहता है, बार बार आता है, कम होता रहता है, लेकिन परमानंद जिसने इस स्वाद को चख लिया, उत्तम रस को चख लिया, वो जीवन में सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। तो ना अस्त्र पर, ना शस्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु आपकी और आपकी कृपा शक्ति पर। मैं इस मन से आभार करती हूँ निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का और अपने सारे मेंटर्स का, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला, अच्छी सच्चे राह दिखाई है, इसके लिए आभार करती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, सत सत नमन निखिल जी को, सत नमन, हरी बोल, हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। बहुत ही बढ़िया स्वर्णित लता जी, आपने बहुत ही जोश से अपने रिव्यूज को रखा और सच में अच्छे कर्म के साथ भक्ति भाव को ऐड करना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छे कर्म करना होता क्या है। अच्छे कर्म की जो हमें नॉलेज है ना, वो हमें शास्त्रों से ही मिलती है और कर्मों को भोगने की शक्ति भी जो है ना, वो हमें शास्त्र ही प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर पूजा पाठ होती है तभी हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं और तभी हमारे अंदर वो शक्ति आती है कि हम उन कर्मों के फल को जो भी लाइक उनको अगर वो कुछ ऐसा भी है ना कि जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कोई हम मिर्च खा रहे हैं ना, तो मिर्च का तीखापन जो होता है वो गुड़ से ही जब हम ऊपर से गुड़ खा लेते हैं तो वो तीखापन तो उतना ही रहता है, लेकिन गुड़ खाने से हमें वो तीखेपन का एहसास कम हो जाता है। ऐसे ही ये गुड़ क्या है, ये हमारी भक्ति है। जब हम इस भक्ति को ऐड कर लेते हैं तो हमें जो कर्मों के जो दुख आते भी हैं तो हम उस दुख से या उस सुख से ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होते और दुख से ज्यादा विचलित नहीं होते। तो भक्ति भाव को ऐड करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों के साथ, जैसे अभी स्वर्ण लता जी ने भी बताया और हम सुन रहे हैं प्रीति जी से भी, तो बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं अपने पोएम सेगमेंट की और। हमारा आज की पोएम हमारे सुनाएंगे नताशा पुरी जी। हरी हरी बोल नताशा जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से हमारा एक और मिथ जो है वो क्लियर हुआ कि अच्छे कर्म ही काफी है, भक्ति की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली हम सभी के मन में यही भाव होता है कि मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, मुझे तो भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हम क्यों बोलते हैं? जब तक हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ होता है तब तक हमारे मन में ये बात होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे हमें आज निधि जी ने बताया कि शास्त्रों को पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि हमें कर्म जो है वो किस प्रकार के करने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, एक होते हैं सकाम कर्म और एक होते हैं निष्काम कर्म। तो जब हम फल की इच्छा से कोई भी काम को करते हैं तो भगवान जी जो है वो हमारे किए हुए किसी भी काम से खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब हम निष्काम भाव से कोई भी काम को करते हैं तो भगवान जी हमारे किए हुए हर एक काम से खुश होते हैं और वही कर्म हमारा जो है वो भक्ति बन जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें निष्काम भाव से प्रभु जी की सेवा को करना है और अपने हर एक काम को जो है वह भक्ति को बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज अपनी पोएम की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से भक्ति और भाव के संग में सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई बैसाखी, आई बैसाखी, नए मौसम में हंसती और गाती। आई बैसाखी, आई बैसाखी, नए मौसम में हंसती और गाती, सबके चेहरे पर रौनक लाती। तो ऐसा ही फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस का ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म हमारा है, जिससे अगर कोई जुड़ जाता है ना तो वो खुशी को ही पाता है। इसीलिए तो निखिल भैया जी ने बताया है, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। बैसाखी सबके चेहरे पर रौनक तो लाती, बैसाखी सबके चेहरे पर रौनक तो लाती, साथ ही साथ किसानों के मन को भी भाती, साथ ही साथ किसानों के मन को भी भाती। इतनी सुंदर इसकी झांकी, इतनी सुंदर इसकी झांकी कि ये तो फसल को भी सोना बनाती, कि ये तो फसल को भी सोना मनाती। बैसाखी की तरह हम सबके चेहरे पर भी रौनक आई जब हमने भगवत गीता के ज्ञान को पाया, जब हमने भगवत गीता के ज्ञान को पाया, मन का हर वो भेद मिटा जिसने हमें पत्थर था बनाया। बैसाखी नए साल में रौनक लाती, सुंदर सुंदर गीत सुनाती और सबकी मुश्किल को भी आसान बनाती। ठीक ऐसे ही गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर मेरा तो जीवन बदल गया। निखिल भैया जी के माध्यम से मुझे भगवत ज्ञान मिल गया। अंधकार भरा जीवन था मेरा, जिसे कि निखिल भैया जी के प्रभु ज्ञान के बहुमूल्य उपदेशों से भर दिया। भगवत गीता ने जीने की कला बताई। जो भी दुख में था या सुख में था, सबके चेहरे पर खुशी है आई। ठीक वैसे ही जैसे बैसाखी ने सबके चेहरे पर रौनक लाई। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स, सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आशिक है हे प्रभु, केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो थैंक यू सो मच निखिल भैया जी, नितिन भैया जी, प्रीति भाभी जी एंड ऑल सीनियर मेंटर्स। हरी हरी बोल
जी। थैंक यू सो मच नताशा जी, बहुत ही बढ़िया पोएम। और आप सबको एक बार और बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सॉरी, मैं प्रेयर्स के लिए बोलना भूल गई। प्लीज जो भी डिवोटीज अपने किसी के लिए भी प्रेयर्स कराना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम सब गोलोकियंस उनके लिए माला डेडिकेट करेंगे। और मेरी भी आज की दो माला सबके कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए डेडिकेट रहेंगी। हरी हरी बोल। अब चलते हैं भजन सेगमेंट की ओर, और आज का भजन सुना रही है शिवानी महाजन जी दिल्ली से। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। बहुत ही ब्यूटीफुल आज का सत्संग रहा, जिसमें निधि जी ने जो है बहुत ही वंडरफुली टॉपिक को एक्सप्लेन करा कि क्या केवल भक्ति ही उपयुक्त है, अच्छे कर्म ही उपयुक्त है भक्ति के नहीं करनी चाहिए भक्ति के लिए। तो हमने फ्रेंड्स ये जाना कि जब हम जो हैं भक्ति के साथ नहीं जुड़े होते हैं, प्रभु के साथ नहीं जुड़े होते हैं, तो हमें ये लगता है कि जैसे हमने सबसे अपने बड़ों से सुनते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमने भगवद गीता का अध्ययन करा, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर जो है अपने मेंटर से शिक्षाएं ली जीवन की, तो ये जाना कि जब हम केवल अच्छे कर्म करते हैं तो वो अच्छे कर्म हमें जो है बंधनों में बांधते हैं, अच्छे और बुरे बंधनों में बांधते हैं, जिससे कि हम फिर जो है इस माया रूपी संसार में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं कर्मों को करते करते भक्ति को ऐड कर लेते हैं, अपने कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना आरंभ कर देते हैं, उनको सेंटर बनाकर जो है करना शुरू कर देते हैं, तो प्रभु की कृपा से जो है हमारा एक कर्म, हर एक कर्म जो है भक्ति बन जाता है, और जिसके लिए हमें ना तो विशेष समय की, ना ही किसी विशेष जगह की जो है, और ना ही विशेष कर्मों की आवश्यकता होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही प्यारा आज का सत्संग रहा। तो आज हम फिर बढ़ते हैं अपने भजन की तरफ। जिस प्रकार से जो है आज हमने सीखा, अपने हर कर्म को हमें जो है भक्ति युक्त कर्म बना के जो है करना चाहिए, उसी प्रकार से ये भजन भी जो है राधे श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अर्पित है, ताकि हम अपने गुरु द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलकर, भागवत गीता के द्वारा बताए हुए शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को योग्य बनाए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय श्री राधे। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा, क्षमा करो जो भाई चूक भारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, क्षमा करो जो भाई चूक भारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो, तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन का आधार तुम हो, दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन का आधार तुम हो, लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, श्यामा जो इतनी उपकार कर दो, अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो, श्यामा जो इतना उपकार कर दो, अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो, मैं तो हूँ तेरे दर की भिखारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, मैं तो हूँ तेरे दर की भिखारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुतली जे हमारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे राधे।
थैंक यू शिवानी जी, बहुत ही प्यारा भजन, बहुत आनंद आया सुनकर, सच में बहुत ही आनंद आया। मैं खुद भी गा रही थी इस भजन को आपके साथ साथ, और बहुत आनंद आ रहा था इस मंच के माध्यम से। रीडिंग सेवा के लिए सुधा प्रेशर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रिव्यूज कंडक्ट करने के लिए। ज्योति जी का बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर रिव्यू देने के लिए। प्रीति रावत जी, सुमन लता जी का दिल से आभार। नताशा पुरी जी ने आज वैसाखी के अवसर पर हम सबके साथ बहुत ही सुंदर पोइम शेयर की, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत आभार। और एक बार वैसाखी की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये याद दिलाती हूँ कि कल सुबह 5:30 बजे के लाइव सत्संग में हम फिर से हाजिर होंगे एक और मिसकंसेप्शन के साथ। भक्ति करने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है। तो थैंक यू एवरीवन। चल जोर से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर हर घर मंदिर।
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस info@golokexpress.org द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7018026821 से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरी हरी बोल।